नमस्कार आदा सत श्री अकाल वेलकम वड़कम सुस्वागतम पधारो इन योर फेवरेट शो समाधान। मित्रों दो किसान भाई थे, दोनों का आपस में बड़ा ही प्रेम था। हर चीज में वो साझे में मिलकर के कार्य किया करते थे, लेकिन कभी थोड़ी सी मनमुटाव की बात आई, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई दोनों के बीच में और दोनों भाई अलग हो गए। दोनों के खेत के बीच में एक मैदान था, थोड़े समय के बाद वहां भी गड्ढा पड़ गया तो बड़े भाई ने सोचा कि शायद छोटे ने गड्ढा खोद दिया है कि मैं उस तरफ ना आ पाऊं। अब बड़ा ये सोचता था कि वो छोटा है तो उसे झुक जाना चाहिए, और छोटा भाई ये सोचता था कि बड़े भाई हैं उनको तो ज्यादा समझदार होना चाहिए और उन्हें झुक जाना चाहिए, बात को खत्म कर देनी चाहिए। खैर जब बड़े भाई ने ये देखा कि इसने छोटे ने गड्ढे खोद दिया है, खोदा नहीं था वो तो, समय के अनुसार बारिश ज्यादा होने के कारण वहां खड्डा पड़ गया था। एक बढ़ाई काम की खोज करते हुए उस गांव में पहुंचा, बड़े भाई के पास पहुंच गया। उसने कहा कि मुझे कुछ काम चाहिए। बड़े भाई ने कहा कि देखो मेरा छोटा भाई है ना, खेत उसका उस तरफ है, उसने इतना बड़ा गड्ढा खोद दिया है, अब मैं चाहता हूं कि तुम इस खेत के चारों तरफ इतनी बड़ी बड़ी बाड़ खड़ी कर दो कि मैं उसे देख भी ना पाऊं वो भी मुझे देख ना पाए। बढ़ाई बहुत समझदार था, उसने कहा कि ठीक है आप सारा सामान ला करके मुझे दे दीजिए। सारी सामान की व्यवस्था बड़े भाई ने कर दी और वो शहर के लिए निकल गए। शाम को जब वो आए तो उन्होंने देखा कि बढ़ई ने खेत के चारों तरफ बड़ी बड़ी बाड़ नहीं बनाई थी, उसने एक पुल बना दिया था और वो पुल जो बीच में गड्ढा हो गया था इस पार से उस पार जोड़ रहा था। अब जैसे ही बड़े भाई शाम को आए और बढ़ई पे नाराज होने लगे कि ये तुमने क्या किया, ये तुमने क्या बना दिया है। अब जब ये नाराज हो ही रहे थे, छोटा भाई भागा भागा आया और बड़े भाई के पैर पकड़ लिए। उसने कहा कि भैया मैंने आपको कितना भला बुरा बोला था, क्या क्या ना जाने मैंने आपको कहा, क्या क्या मैं आपके लिए सोचता था, लेकिन आप कितने भले दिल के हो। भले ही गड्ढा हो गया था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे पुल का निर्माण होगा, आपने बड़प्पन दिखाते हुए पुल का निर्माण कर दिया। दोनों भाई गले मिले, बहुत प्यार से रोए, बड़े के दिल में भी जो भी थोड़ा बहुत था वो भी धुल गया। अब बढ़ई वहां से जाने लगा तो बड़े भाई ने कहा रुको रुको और भी बहुत काम है तुम्हारे लिए। बढ़ई ने कहा मैं रुक तो जाता लेकिन ऐसे बहुत सारे पुल मुझे और बनाने हैं। मित्रों कई बार ऐसा होता है कि आपसे संबंधों में छोटी छोटी बात को लेकर के हम आपस में बातचीत नहीं करते हैं और दूरियां इतनी बढ़ जाती हैं, इतने गड्ढे बड़े हो जाते हैं कि सचमुच पुल की आवश्यकता पड़ती है। हम सोचते हैं कि सामने वाला शुरुआत करे, सामने वाला सोचता है ये शुरुआत करे और कभी भी पुल नहीं बनता, खाई और गहरी गहरी होती चली जाती है। क्यों ना हम आपस में खाई की बजाय पुल का निर्माण करें, आपस के संबंधों को बहुत सुखद और बहुत सुंदर बना लें। जिंदगी छोटी सी है ना, इसे खाइयों में बांट करके अपने आप को अकेला करके हमें क्या मिलेगा। प्रेम से रहें, स्नेह दें, स्नेह प्राप्त करें, सम्मान लें, सम्मान प्राप्त करें, यही वास्तव में समाधान कार्यक्रम आपको सिखाता रहता है। आइए इसी सुंदर प्रेरक बात के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी स्वागत और अभिनंदन है। बहुत ज्यादा भ्राता जी आजकल यदि देखा जाए, परिवार में भी देखा जाए, संबंधों में भी देखा जाए, तो पुल कम खाइयां ज्यादा दिखाई दे रही हैं।
इसका कारण है कि मनुष्य का अभिमान बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कोई भी झुकना नहीं चाहता है और कोई भी अपना बड़प्पन दिखाना नहीं चाहता। बड़ा सोचता है कि छोटे को मेरी बात माननी चाहिए और छोटा सोचता है बड़ा बड़ा है उसे समझदार होना चाहिए। लेकिन दोनों के विचारों में यदि हारमोनी हो जाए तो ये खाइयां बहुत जल्दी भर सकती है और भरने में ही फायदा है, जैसा इस कहानी से स्पष्ट है। देखिए छोटा भाई जरूर रिग्रेट कर रहा था, पश्चाताप कर रहा था कि मैंने बड़े भाई को बहुत ज्यादा बोल दिया, लेकिन वो कैसे जाए ये उसका मन ही उसे जाने नहीं दे रहा था। ऐसे यदि हम कार्य भी एक दूसरे के लिए कुछ अच्छे करने लगे तो ये खाइयां भर जाती हैं।
बिल्कुल, लेकिन भ्राता जी यही वाली बात आती है शुरुआत कौन करे, बहुत कठिन हो जाता है ये करना और कई बार मन में ये झिझक भी रहती है कि मान लो मैंने शुरुआत भी की लेकिन सामने वाले ने अच्छा रिस्पांस नहीं दिया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, पहले ही ऐसा एक नाराज सा माहौल है और ज्यादा खराब हो जाएगा। शुरुआत कौन करे और ये जो झिझक है वो कैसे दूर हो।
मुझे आपकी बात सुन के अपनी बड़ी दादी प्रकाशमणि जी याद आ गई। एक केस था, हमारे यज्ञ में कपड़े दिए जाते हैं सबको साल के एक ही बार, तो एक व्यक्ति नाराज हो गया, युवक था वो, और कहा मैं नहीं दादी से कपड़े लूंगा ये वो, और वो जा रहा है, हम सब वहाँ आंगन में हैं और दादी उसे बुला रही है इधर आओ। अरे दादी तुम्हें बुला रही, और वो आ नहीं रहा है और वो जा रहा, आया नहीं। लेकिन दादी ने इस बात को भी माइंड नहीं किया और सबके बीच फिर हंसते बहलते कहा, देखा मेरा भाई नाराज हो गया, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। फिर उसे बुलाया, फिर बुलाया, दो तीन बार बुलाने से वो आ गए, उसने अपना गुस्सा भी उतार लिया और बात समाप्त भी हो गई। जो बड़े हैं उनमें सचमुच बड़प्पन होना चाहिए, इस बात को दरकिनार करके कि उसने मेरी बात न मानी तो मेरी भी इंसल्ट होगी, इस बात को छोड़कर बड़ों को अपना बड़प्पन दिखाते हुए छोटों से को जितना ज्यादा सहयोगी बनाया जाए, प्यार दिया जाए, अपने समीप लाया जाए और बातों को खत्म किया जाए, उतनी जल्दी ये खाइयां पटने लगेंगी।
जी जी, मतलब आशीर्वाद बड़ों से हो जानी चाहिए तो अच्छा रहता है कि छोटे भी सहज रूप से उस बात को स्वीकार।
हाँ, लेकिन अगर छोटा समझदार है तो बड़ा वही है फिर क्योंकि जो समझदार है वही बड़ा है, जो समझदार हो उसको ही आगे आना चाहिए।
बिल्कुल दादा जी, कई बार ये होता है कि जैसे मैंने दूसरी बात कही थी कि हम दो बार, तीन बार, चार बार अपनी तरफ से प्रयास करते हैं कि बातें बहुत सामान्य हो जाएं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले की तरफ से एक प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिल रहा होता है। ऐसे में क्या करना चाहिए, अपने प्रयास जारी रखें या ठीक है अब वो नहीं मान रहा है तो समय ठीक करेगा?
यही बात खाइयों को चौड़ा करती है
जी,
कि एक व्यक्ति चाहे वो छोटा है या बड़ा है, बात समाप्त करना चाहता है लेकिन दूसरा व्यक्ति सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में जो स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है वो ये है कि हम उसे रोज 10 मिनट योग के वाइब्रेशंस दिया करें, सुभावनाओं के वाइब्रेशंस दिया करें, उसे प्यार के वाइब्रेशंस दिया करें। वो मेरी मानता नहीं, वो सुनता नहीं, वो तो बदलेगा नहीं, इसे निगेटिव वाइब्रेशंस जाते हैं। प्यार वो मेरा ही तो है, ठीक है आज नहीं कल वो मेरी बात अवश्य सुनेगा, ये बातें ठीक हो जाएंगी, ऐसे गुड फीलिंग के साथ स्वमान का अभ्यास करें। मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं पूर्वज हूँ, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, तो स्वमान से बोल में प्रभाव आता है। तो एक और हमने योगदान दिया, शुभ भावनाएं रखी, हमारा योगदान और हमारी शुभ भावनाएं उसको नॉर्मल करेंगी, अब वो इंतजार करेगा, स्थिति बदल जाएगी, अब वो इंतजार करेगा कि वो दूसरा व्यक्ति कब मेरे से बात करे, और जैसे ही आप उससे बात करेंगे उस स्वमान के प्रभाव से आपकी बातों में प्रभाव होगा और सुभावनाओं के कारण वो तैयार हो गया तो जल्दी बात समाप्त।
इसमें कितना वक्त लग जाता है ब्रदर जी, जैसे हम सामने वाले में चेंज लाना चाहते हैं तो कितने दिन में वो परिवर्तन देखा जा सकता है? क्योंकि कई बार ऐसा भी कई लोग कहते सुने गए हैं कि भाई लगातार हम उनके लिए अच्छा प्रयास करते हैं, अच्छी भावनाएं रखते हैं, लेकिन वो बंदा तो परिवर्तित ही नहीं।
हाँ देखिए, कम से कम हमें 7 दिन पहले करके देखना चाहिए
जी।
और फिर अगर संभव नहीं हो रहा है, सोल नहीं हो रही है बात, तो 21 दिन करना चाहिए। फिर भी अगर कोई बात नहीं होती तो हमें समय लेना चाहिए, उस व्यक्ति का वो निगेटिव संस्कार बहुत कड़ा है, अब उसमें इतनी जल्दी चेंज नहीं आएगी, इसलिए उस बात को हल्का करके वहीं छोड़ देना चाहिए, अपना मार्ग बदल लेना चाहिए।
बिल्कुल, तो भ्राता जी क्या करें फिर, मान लीजिए ये वाली स्थिति आ गई है, मार्ग बदलने वाली बात आ रही है हमारी, तो ये वाली बात तो हुई नहीं कि ब्रिज तो बन नहीं पाया।
हाँ
तो
देखिए, इसमें एक समय की हमें इंतजार करनी पड़ेगी
जी।
कभी कभी जैसे कहा जाता है टाइम इज द बेस्ट हीलर, कभी कभी एक उचित समय आने पर ही हर चीज बनती है, तब तक वो भी कई निगेटिव चीजों से गुजर चुकेगा, कई परिस्थितियों से गुजर चुकेगा, तब उसको आभास होगा कि अपने तो यही हैं, सच्चे हितैषी तो यही हैं, कई कड़वे अनुभव उसको मोल्ड करने के लिए बाध्य कर देंगे, उचित समय की इंतजार करें और तब ब्रिज बन जाएगा।
बिल्कुल प्रता जी, आज हमारे पास जो SMS आए हैं मैं उनकी ओर आपको लिए चलता हूँ। चलिए, हमारी शुभकामना तो रहेगी जो हमारी चर्चा चल रही है कि कहीं भी खाई ना हो, आपस में ब्रिज भी बना रहे, प्यार और सम्मान बना रहे। पहला जो हमारे पास SMS है ब्रदर जी, ये कहते हैं कि ओम शांति, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरा ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर है। मेरी समस्या ये है कि करीबन 8 ईयर्स से मैं हमेशा डिप्रेशन में रहती हूँ। जीवन में कई डिफिकल्ट सिचुएशन आए, करीबी संबंधों में भी धोखा मिला, फादर की भी डेथ हो गई, माँ होते हुए भी ना होने के बराबर ऑर्फन जैसा फील होता रहा, पढ़ाई में भी लगातार गिरावट होती रही, मैं हमेशा चुप चुप रहने लगी, कोई अच्छा दोस्त भी मुझे नहीं मिला। ऐसा स्टेट ऑफ माइंड होने के कारण किसी से चाह कर भी मैं घुल मिल नहीं पाती। अब विद्यालय से जुड़ गई हूँ लेकिन ये कमी अब भी बरकरार है कि मैं किसी से घुल मिल नहीं पाती हूँ। और साथ ही ये भी एक परेशानी बनी रहती है कि मन में नेगेटिव विचार आते हैं, कई बार लगता है कि जीवन का अंत कर लूं, क्या करना चाहिए?
इनके जो चारों ओर इनके परिस्थिति आई उसने इनको डिप्रेशन दे दिया है
जी।
इनकी गलती तो नहीं है, माँ भी माँ जैसा व्यवहार न करे, बाप ही इन्हें प्यार करता रहा होगा वो भी नहीं रहा, तो चारों तरफ से ये घिर गई
जी।
अभी जब इन्होंने ज्ञान लिया है, राजयोग सीखा है, तो इस परिस्थिति से ये बहुत जल्दी बाहर आ सकती हैं। इनके अंदर जो एक बहुत अकेलापन और किसी बात न करने की अंतर्मुखी एक मनोवृत्ति पैदा हो गई थी, उससे अब ये निकले। हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सेवाओं के प्रोग्राम बहुत चलते हैं, जहाँ दूसरों को ज्ञान दिया जाता है, जहाँ से हम मिलजुल कर कोई कार्य करते हैं, ये उन कार्यों में लगे ताकि ये नजदीक आए लोगों के। इसके अच्छे फ्रेंड क्यों नहीं बने, क्योंकि बहुत एकाकी हो गई थी ना, किसी बात नहीं करती, चेहरे पे मुस्कान नहीं थी, तो जिस मनुष्य के चेहरे पे उदासी रहती है उसके नजदीक कोई आता नहीं, उसे मनहूस जैसा समझते, बड़ा अनलक्की सा व्यक्ति।
कई बार लोग समझते हैं इगोइस्टिक नेचर का है, इगोइस्टिक
नेचर का होगा, पता नहीं कैसा व्यवहार करेगा, रेस्पॉन्स अच्छा देगा या नहीं देगा। तो अब इसको सेवाओं में लग जाना चाहिए, पहला काम ये करना चाहिए। सेवाओं में जब दूसरे के संपर्क में मनुष्य आता है तो कोई ना कोई अच्छा फ्रेंड उसको मिल ही जाता है, जिनके साथ मिलकर काम करते हैं। और इनको अपनी ओर से लोगों से बात करनी चाहिए, अच्छी अच्छी दूसरे बात करें, ये काम ना छोड़कर खुद पहल करनी चाहिए। फिर दूसरा काम करना चाहिए, जो हमारी प्रदर्शनियां लगती हैं उसमें हम दूसरों को ज्ञान देते हैं चित्रों के माध्यम से, तो ये वो भी सीख ले थोड़ी सी, उसमें देर नहीं लगती, एक घंटे में सब सीख लिया जाता है। और फिर ये दूसरों को ज्ञान देने की सेवा करे, इससे इसका खुलेगा, अंदर खुशी आएगी, क्योंकि जब हम दूसरों को ज्ञान देते हैं तो उसके रिटर्न में हमें तत्काल बहुत खुशी मिलती है, तो इससे इसके जीवन में खुशी का संचार होगा। और तीसरी बात, जो रोज के ईश्वरीय महावाक्य सुने जाते हैं उनको ये रोज सुने, इस तरह इसका जो एक मेंटेलिटी बन गई थी ना पहले, वो चेंज होगी। अब रही बात वो लंबे समय का जो डिप्रेशन है, उसको ये पहली विधि जो हम बताते हैं कि सवेरे उठकर 108 बार लिखेंगी मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, रात को सोने से पहले 108 बार लिखेगी मैं एक महान आत्मा हूँ, इससे इसके ब्रेन को पावरफुल एनर्जी, प्योर एनर्जी जाएगी, और ब्रेन में अगर कोई ब्लॉकेज हो चुके हैं इसकी घटनाओं के कारण, वो तेजी से खुल जाएंगे। ये काम इसको 3 मास कर लेना, बस मुश्किल से 15 मिनट सवेरे 15 मिनट रात को लगेगा। और अब इनको विश्व ड्रामा का बहुत विशाल ज्ञान मिल गया है, अब जो कुछ हो गया है वो हो गया, माँ ने अच्छा व्यवहार नहीं किया या और लोगों ने अच्छा व्यवहार नहीं किया या लंबे समय तक इनको रिजेक्ट किया गया, ये सब भी मनुष्य के पूर्व जन्मों के किसी न किसी कर्मिक अकाउंट का ही प्रभाव होता है। तो अब जब इसको ड्रामा का ज्ञान मिल गया, फादर की मृत्यु हुई, भाई आत्मा तो मरती नहीं, और मृत्यु तो एक निश्चित सत्य है, उसको तो कोई टाल ही नहीं सकता, और जो कुछ मेरे साथ हुआ वो तो पूर्ण हो गया, अब मुझे अपना भविष्य सुंदर बनाना है। ड्रामा के ज्ञान से इस तरह का चिंतन करते हुए ये तेजी से इन चीजों से बाहर निकल जाएगी, और थोड़ी सी मेहनत करनी है 3 मास केवल, तो इनका पूरा का पूरा जीवन सुखद हो जाएगा।
बिल्कुल, मतलब 3 महीने तक अच्छा अभ्यास कर लिया जाए तो सब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। कई बार मेहता जी ऐसा होता है कि चूंकि ऐसी बुरी स्थितियों से होकर व्यक्ति गुजरा हुआ है, कई बार वही चीजें फिर हावी हो जाती हैं। व्यक्ति अच्छाई की ओर बढ़ना चाहता होगा, अच्छे विचार करना चाहता होगा, लेकिन चूंकि वो चीजें बहुत गहरी रही हैं तो हावी हो जाती हैं, तो शायद ये कठिन हो जाता है कि उस हावीपन को, भारीपन को कैसे थोड़ा हल्का किया जाए।
इसी की मैंने विधि बताई, इसी को जानते हुए कि जो व्यक्ति डिप्रेशन में रहता है ना, उसके बारे में क्या होता है कि एक विचार मान लो उसको आ गया, या किसी ने उसको गलत कह दिया और उसके बारे में उसका चिंता वो ही चलता रहेगा, फिर वो उसको चेंज करने की क्षमता उसके पास नहीं होती। इसलिए मैंने राय दी कि सवेरे उठते ही 108 बार लिखें मैं मास्टर सर्वशक्तिमान। इसका क्या फायदा है, क्योंकि जब मनुष्य सवेरे उठा है बस वो ज्यादा फ्रेश होकर आए, हाथ मुंह धोकर आए और तुरंत बैठ के लिखना शुरू करे, तो उस टाइम हमारा सबकॉन्शियस माइंड जगा हुआ है, तो सबकॉन्शियस माइंड में पहले विचार जाने लगे तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो, तो अंदर की सोई हुई शक्तियां जगने लगेंगी, आत्मा से बहुत शक्तिशाली वाइब्रेशंस ब्रेन को जाने लगेंगे, और 15 मिनट लिखने के बाद ही ये अपने को बहुत एनर्जेटिक फील करेंगी। वो एक जो सीमितता आ गई थी और नैरोनेस आ गई थी कि एक ही विचार या पूर्व की घटनाएं बार बार याद आती थी, बहुत जल्दी उनसे बाहर आ जाएंगे। ऐसी शक्ति अपने महसूस करेंगे, दे वन नथिंग, वो तो पास्ट हो गया, अब उसको याद करके क्यों परेशान होना है, अब गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फायदा। लेकिन ये विचार भी प्रभावी तब होते हैं जब मनुष्य का मन शक्तिशाली हो, तो ये लिखने से मन शक्तिशाली हो जाएगा।
बिल्कुल, तो चलिए 3 मास सुंदर अभ्यास करने के बाद हम एक अच्छी स्थिति में इन्हें प्राप्त करेंगे। और अपना अनुभव जरूर शेयर कीजिएगा, जब आप ये अभ्यास करें और मन की स्थिति में परिवर्तन प्राप्त करें तो अपने अनुभव जरूर हम तक प्रेषित कीजिएगा, क्योंकि लगातार हम अनुभव को भी समाधान में शेयर करते हैं आप लोगों के साथ, ताकि एक दूसरे के अनुभव से दूसरों का भी मनोबल बढ़े और वो आगे बढ़ पाए। राधा जी, मैं दूसरा SMS ले रहा हूँ। ये कहते हैं कि भाई जी, मुझे लगता है कि मुझ पर किसी ने तंत्र टोटका करवा दिया है। मेरी सेहत बहुत खराब रहती है, 36 साल की उम्र है, दिखाई भी कम देने लगा है, आलस ज्यादा आता है और किसी काम में मन नहीं लगता है, कृपया मदद करें। पहली बात तो ये कि भ्राता जी, क्या ये केवल तंत्र और टोटके से ऐसा होता है या कोई दूसरी स्थितियां भी ऐसी होंगी जिससे ऐसी मनोस्थिति बन जाती है?
देखिए, ये मेडिकल चीज भी हो सकती है, शारीरिक बीमारियां भी कुछ हो सकती है, उनका तो इनको इलाज करना ही चाहिए। ये बात सुन के मुझे एक घटना याद आ रही, 3 दिन पहले की ही। तो हमारे यहाँ एक युवक रहता है, उसके साथ ऐसा ही हो गया, कहा मन उचाट रहने लगा है, कुछ भी खा रहा हूँ कॉन्स्टिपेशन बहुत हैवी हो गया है, चेहरे पर उसके उदासी साफ झलक रही थी, कहीं भी मन नहीं लग रहा। वो भी वीडियोग्राफी करता है हमारे डिपार्टमेंट में ही। तो कहा मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, क्या करूँ। उसको कहा भाई आयुर्वेदिक दवाई तो ले लो पेट को साफ करने की, आप कम से कम फ्रेश तो रहे। कहा मैं सब लेके देख लिया है, कुछ होता ही नहीं है। तो मैंने कहा चलो मैं देख लेता हूँ। तो मैंने उसको पानी चार्ज करके दिया, पानी को दृष्टि दी, 7 बार संकल्प किया मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, और वो तो पी के चला गया। फिर तो मुझे मिला नहीं, कल वो मुझे मिला था। मैंने पूछा भाई क्या हाल है तुम्हारा, कहा मैं तो तभी ठीक हो गया। उसके चेहरे पे रौनक आ गई थी। मैंने कहा वाह, चार्ज वाटर तो बहुत बड़ी दवाई हो गया।
अच्छी बात है, जिनको भी ऐसी कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ हो आपसे चार्ज करके पानी पीने।
तो मुझे ऐसा ही लगा था कि लगता है उस पर भी किसी ने कुछ करा दिया, वो भी यही बोल रहा था
जी, जी।
मेरे पे किसी ने कुछ करा दिया है। तो भले ही आजकल विज्ञान बहुत विकसित हो चुका है, लोग इन चीजों में विश्वास नहीं करते, लेकिन तंत्र मंत्र की शक्ति भी कुछ तो है, और लोग उसका पॉजिटिव कल्याणकारी प्रयोग कम करते हैं, दूसरों से बदले लेने का प्रयोग ज्यादा करते हैं। किसी पंडित को पैसा दिया, चल भाई करा दे, उसको दुखी देखकर ये खुश होते हैं। तो पहले तो इनको अपनी नेत्र ज्योति को ठीक करने के लिए आंखों को एनर्जी भी देनी चाहिए। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, 2-3 बार याद करके हाथ ऐसे रखेंगे
जी।
दूसरा, इनको 10 मिनट अपने ब्रेन को भी एनर्जी देनी चाहिए, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, ये करके 1 मिनट यहाँ हाथ रखेंगे, ऐसा 10 बार करेंगे, 5 बार आंखों को दे, 10 बार ब्रेन को दे। एक तो ये इफेक्ट, बहुत अच्छा इफेक्ट इससे इनकी आंखों पर आएगा। ये उछते उछते से रहते हैं तो चार्ज करके पानी इन्हें 3-4-5 बार सारे दिन में पीना चाहिए, क्योंकि ऐसा देखा गया कि ये जो तंत्र मंत्र है इसमें कई लोग कुछ मंत्राइज करके कुछ मिला के खिला देते हैं लोगों को, ताकि ये कमजोर होते जाए, इनका शरीर डल होता जाए और ये मृत्यु तक पहुंच जाए। तो ये जो चार्ज पानी है ये उसके इफेक्ट को जल्दी खत्म कर देता है, फिर से मनुष्य एनर्जेटिक हो जाता है। तो ये इन्हें करना चाहिए, और इनके लिए मंत्र शक्ति का इन पे प्रयोग किया तो ये भी अपनी मंत्र शक्ति का ही प्रयोग करेंगे, और वो मंत्र है मैं सर्व शक्तिवान की संतान, मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, और संकल्प कर दे मेरे पे कुछ हो ही नहीं सकता, और अगर कुछ हो गया हो तो नष्ट हो जाए। तो ये इनका भी मंत्र हुआ मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ। कुछ ही दिन ये करें, मुझे तो विश्वास है 7 दिन में इनका बहुत कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन क्योंकि आंखों की ज्योति वीक हो गई है इसलिए इन्हें भी ये प्रयोग 3 मास अवश्य कर लेने चाहिए, ताकि ये पुनः हेल्दी हो जाए और लंबी आयु जीवे। इतना ही तो और जिए कम से कम जितनी आयु हो गई है, 36+36 72 ईयर्स, तो ये सुख से जिए। वैसे होता ऐसा मेरे पास, क्योंकि कभी कभी ऐसे केस आए हैं तो ऐसे व्यक्ति का न पढ़ने को मन करता, न टीवी देखने को मन करता, मन उजड़ा उजड़ा एकदम।
वो मैंने सुना है कि शायद कोई उच्चाटन कोई क्रिया है जो करा,
ऐसा ही उसको ये कहते हैं उच्चाटन क्रिया करा दी है। इसमें पानी चार्ज करके पीने से मन बिल्कुल फ्रेश होना ही चाहिए, लेकिन रोज ईश्वरीय महावाक्य सुनना और सवेरे उठकर योग अभ्यास करना है, छोड़े नहीं। भले इनको उसमें ज्यादा आनंद न भी आए, सब विधियां अपनाएंगे, थोड़े दिन में इनको उन सब चीजों में आनंद आने लगेगा और इससे बाहर आ जाए।
प्रदा जी, कोई अनुभव ऐसा जिस पे ऐसा कुछ कराया गया रहा हो, आपके पास आए हो, आपने कुछ प्रैक्टिस कराई हो और वो इससे बाहर आ गया?
एक ऐसी कन्या थी जी। तो वो कहे कि जब मैं अपने कमरे में जाती हूँ बस मेरा मन उखड़ जाता है, भागो यहाँ से भाग जाओ तुम, बाहर आती हूँ तो ठीक हो जाता है। तो मैं समझ गया कि उसके कमरे में किसी ने कुछ करा दिया है। तो मैंने इतना ही बताया कि पानी लो, उसको दृष्टि दे के 21 बार संकल्प करो कि मैं मास्टर सर शक्तिवान हूँ, और अपने कमरे में छिड़क दो। मैंने कहा रोज छिड़क देना एक बार। उसने एक ही बार छिड़का और कहा ठीक हो गया। तो मेरा मन वहाँ फर्स्ट क्लास लगता है, मैं वहाँ खुश रहती हूँ, मैं खुद सोचती हूँ मैं ये क्या क्या सोचा करती थी, तो बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये बैड एनर्जी है, बैड एनर्जी कहेगी जो आजकल इफेक्ट कर देती है, लेकिन इनसे बचने की गुड एनर्जी बहुत पावरफुल है, उसका यदि हम प्रयोग करेंगे तो बैड एनर्जी, तो बैड थिंग इज ऑलवेज वीक, हमें ये भूलना नहीं चाहिए। एक बहुत बुरा व्यक्ति भी है वो अंदर से बहुत कमजोर होगा। ये बैड तंत्र मंत्र की एनर्जी बहुत वीक एनर्जी है, पर मास्टर ऑलमाइटी की एनर्जी बहुत पावरफुल एनर्जी है।
कई बार लोगों के मन में, एक सामान्य व्यक्ति के मन में ये प्रश्न उठता है कि जो लोग इतना बुरा बुरा हमारे लिए करते हैं, हम बहुत अच्छे हैं दूसरों के लिए, लेकिन लोग हमारे लिए इतना बुरा करते हैं, हमारे ऊपर कुछ मंत्र का प्रयोग करवा देते हैं, तो भगवान ऐसे में उन्हें सजा क्यों नहीं देता और ऐसे में सब कुछ ठीक ठीक क्यों नहीं कर देता, हमें मदद क्यों नहीं करता, तो भगवान ऐसे में चुप चुप क्यों बैठा रहता है?
नहीं, भगवान चुप नहीं बैठा रहता, उन्हें भी उचित समय पर जाके सजा मिलेगी और हम पर उसका कोई प्रभाव न हो, यही भगवान की हमें मदद है। हम हर जगह भगवान को गाली न देने लगे, उसके दोष न निकालने लगे, कहीं ना कहीं दोष मनुष्य का अपना ही होता है, अपने कर्मों का इफेक्ट होता है। बाकी भगवान तो सदा ही हमें बहुत प्यार करता है और अपनी सभी संतानों को खुश और सुखी देखना चाहता है, तो वो तो हमारे लिए प्यार बरसाता ही है, बहुत प्यार हमसे है। हम बस उस पर विश्वास रखें और उसके प्यार को महसूस करते रहें, तो उसके प्यार में ये सब चीजें भी खत्म हो जाएंगी।
तो भगवान उन्हें सजा तो देगा ना?
देगा बिल्कुल।
मतलब इसमें हमें स्योरिटी चाहिए कि उनको सजा मिलनी चाहिए,
तभी खुशी होगी।
क्योंकि लोग यदि हम पे इतना गलत कर रहे हैं तो जरूर उन्हें न्याय तो होना चाहिए। प्रदा जी, एक दूसरा SMS आया है, ये कहती है, हाउ टू किल माय ईगो, आई एम 44 ईयर ओल्ड, येट माय रिलेशन विद माय डॉटर जो 19 साल की है इज नॉट गुड, व्हाट टू डू। यहाँ भी ईगो प्रॉब्लम है, शायद हमने शुरुआत प्रदा जी की थी, SMS भी वैसा ही आया है।
देखिए, ईगो की एक दो दवाई है। पहले तो ये एक बहुत सुंदर चीज है कि इनको ये पता है कि इनमें ईगो है, ये एक बहुत गुड साइन है कि मनुष्य अपने ईगो को पहचानता हो, अपने अहम को जानता हो, क्योंकि जो जानता है वही उससे मुक्त होने के लिए भी तत्पर रहता है। तो पहले तो जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, सच्चे मन से ये स्वमान का अभ्यास करें, स्वमान से अभिमान स्वतः ही समाप्त हो जाता है। ये भगवान के महावाक्य हैं और ये देखा भी गया, क्योंकि ईगो भी एक तरह का स्वमान है लेकिन वो निगेटिव है, और जब हम श्रेष्ठ स्वमान का अभ्यास करते हैं तो वो इस घमंड को, इस अहंकार को जो इसके निगेटिव स्वरूप है, उनको नष्ट कर देता है। जैसे मैं एक महान आत्मा हूँ, फील करें तो मैं महान हूँ, महान माना नम्र, मैं पूर्वज हूँ, मैं बड़ा हूँ, मुझे बड़े कार्य करने हैं, जिसमें अभिमान होगा वो तो बड़े कार्य करेगा ही नहीं, ऐसी अपने को ट्रेनिंग दें तो स्वमान मनुष्य के अभिमान को नष्ट करेगा। दूसरा, दो ही विधि इनको अपनानी है कि जिस चीज का इनको अभिमान हो, किसी को अपनी बुद्धि का अभिमान होता है, किसी को अपने बड़े होने का ही अभिमान होता है, मैं माँ हूँ, मैं तुम्हें जो चाहे कहूँ, मेरा अधिकार है, अधिकारों का अभिमान, किसी को अपने धन का अभिमान, किसी को अपनी सुंदरता का अभिमान, ये मानकर चलें कि जो कुछ मेरे पास है वो प्रभु देन है। कोई व्यक्ति बहुत सुंदर भी है, आज वो बीमार हो जाए या उसके चेहरे पे सफेद दाग आ जाए या और कुछ हो जाए, तो उसकी सुंदरता नष्ट हो जाएगी। तो ये सब प्रभु देन है। उस देन का हम खुद भी सुख पाएं और दूसरों को भी उससे सुख दें। तो बस एक स्वमान की प्रैक्टिस, एक ये सब कुछ प्रभु देन है, इससे अपने अभिमान को नष्ट करें और बहुत जल्दी नष्ट हो जाएगा क्योंकि इनको अपने अभिमान का ज्ञान।
तो भ्राता जी, ये जो अब रिलेशनशिप में जो एक दूरी आ गई होगी या जिस खाई की शायद हम बात कर रहे थे, वो खाई आ गई होगी क्योंकि अभिमान यदि है तो गुस्से से ही व्यवहार करती होंगी, गलत व्यवहार करती होंगी, अब बच्ची शायद उनसे थोड़ी दूर दूर हो गई होगी, इस खाई को थोड़ा सा भरना हो या संबंधों को फिर से सामान्य करना हो तो
अब इस माँ को चाहिए अपनी बच्ची को अपनापन दे। क्योंकि यहाँ वही खतरा होता है कि जब बच्चों को माँ बाप का प्यार नहीं मिलता तो प्यार की तलाश में भटक जाते हैं और उसके परिणाम हमेशा ही खराब होते, क्योंकि प्यार मनुष्य को अंधा बना देता है प्यार की खोज, और वो कहीं भी फंस जाते हैं और फिर जीवन में बहुत पश्चाताप करते हैं। इसलिए इस माँ को चाहिए अपनी बच्ची को अपनापन दे। अब जिस तरह ये पहले व्यवहार करती थी क्रोध से, अभिमान से, अब वो व्यवहार को चेंज करके नम्रता से अपनी बच्ची से व्यवहार करे। तो बच्ची क्योंकि अभी छोटी है और वो माँ का प्यार चाहती है, उसके मन में अभी भी तड़फन होगी कि माँ कब मेरे से अच्छी बात करे, उसमें चेंज आने में देर नहीं लगेगी, फटाफट एक दो दिन में बिल्कुल समीप आ जाएगी।
जी जी जी, मतलब एक प्रकार से अपनी तरफ से ही जो बड़े हैं वो भी बड़प्पन वाली बात आ गई कि वहाँ से झुकाव हो और वहाँ एक प्रकार से एक ब्रिज बनाने का कार्य करें। प्रता जी, आज की सुंदर चर्चा के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। मित्रों, शुरुआत ही हम लोगों ने की थी और सचमुच परिवार में या हम जहाँ कहीं भी हैं, मनुष्य वैसे भी एक सामाजिक प्राणी है, अकेला तो रह नहीं सकता, प्यार उसे चाहिए ही चाहिए। और आपने खुद भी अनुभव किया होगा कि जहाँ कहीं भी टकराहट है, मन मुटाव है, ईर्ष्या द्वेष है, वहाँ पे संबंधों में बहुत खटास आ जाती है। और जहाँ खटास है वहाँ आनंद नहीं आता, जहाँ मिठास है वहाँ आनंद आता है। हम हमेशा कहते हैं कि जब कभी खुशी का माहौल है कुछ मीठा हो जाए, कुछ खट्टा हो जाए, ऐसा तो हम कभी कहते ही नहीं है। तो वास्तव में परिवार में या जिस परिवेश में हम हैं वहाँ पे मिठास पैदा करना, वहाँ ब्रिज बनाना हमारा काम है। और कई बार ये जो अहम का भाव है ये बहुत ज्यादा दूरियां पैदा कर देता है, गुस्से से भी हम व्यवहार करने लगते हैं और वो परेशानी का सबब बन जाता है। इसीलिए किसी कवि ने भी बहुत अच्छी बात कही है कि शायद प्रभु को भी पसंद नहीं है जो हम बयां करते हैं उसमें जो तल्खी है वो हो, इसीलिए शायद उन्होंने जीव में हड्डियां नहीं दी हैं, इसे भी उन्होंने नरम रखा है ताकि हम जो व्यवहार करें वो भी नरमाहट के साथ करें, नम्रता के साथ करें। और वैसे भी जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जैसे अंतिम केस में हमने देखा, कहा जाता है कि जब आपकी जूती बच्चे के पैर में आने लगे, आपका जूता बच्चे के पैर में आने लगे या फिर आपके कपड़े बच्चे यूज करने लगे, तो फिर उनसे हमें दोस्ताना व्यवहार करना चाहिए। यदि अहम भरा व्यवहार हम करते रहेंगे तो शायद वो दूरियां बढ़ती चली जाएंगी, बच्चों के भटकने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। इसीलिए प्यार से, बहुत नम्रता से, बहुत सम्मान से अपने आसपास बच्चों के साथ भी, अपने छोटों के साथ भी व्यवहार करें ताकि परिवार में एक खुशहाली का माहौल बना रहे। हमारी ढेर सारी दुआएं, ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपके परिवार में, आपके जहां भी स्थान है, सगे संबंधी हैं, उन सबके साथ आपका प्यार भरा एक सुंदर व्यवहार बना रहे, कहीं भी खटास ना हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।
धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, पत्नी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान,
सारा ये जहान
कहता है ये समाधान, समाधान, समाधान।